राधे, जय श्री राधे। जय कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, कृष्ण बलराम, जय कृष्ण बलराम। जय जय प्रभुपाद, 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 जय प्रभुपाद। निताई गौर प्रेमानंदे श्री श्री राधा श्याम सुंदर भगवान की, श्री श्री कृष्ण बलराम की, यशोदा नंद महाराज की, बरसाना नंद गांव धाम की, शिवृंदावन धाम की। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सब लोग बोलिए हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। युग धर्म हरिनाम संकीर्तन की। हरे कृष्णा। आप सबका श्री बरसाना धाम में और हमारे शिविर में स्वागत है। हरि बोल, जय जय श्री राधे। श्याम, धाम एक बड़ी दिव्य वस्तु है और धाम हमेशा भौगोलिक स्थिति से बहुत ही अस्थायी रहता है। मैंने कहा भौगोलिक रूप में, यानी कि ज्योग्राफिकली एनवायरमेंटली इसकी एक विशेषता है कि वहाँ का वातावरण हमेशा क्या कहते हैं उसको, अनप्रेडिक्टेबल, उसको क्या कहते हैं हिंदी में, अनिश्चित। कब किस समय कौन सा वातावरण मिलेगा इसका भरोसा नहीं रहता है। आप देखिए बद्रीनाथ देखिए, द्वारका देखिए, श्रीरंगम देखिए, जगन्नाथपुरी देखिए, अयोध्या देखिए, वृंदावन देखिए, नवद्वीप धाम देखिए। ऐसा क्यों रखा गया है, ये विशेष भगवान की योजना है। आप कहीं भी धाम में जाएंगे जहां पर तीर्थ और धाम है, नासिक को देखिए, बहुत ज्यादा गर्मी, बहुत ज्यादा सर्दी, या ऐसा ही रहता है हमेशा। तो कारण यह है कि यहाँ पर एक ये फिल्टर है, इस प्रकार का वातावरण जो होता है ना, वो एक फिल्टर है जो लोग अश्रद्धालु होते या नास्तिक होते या निंदक होते हैं वो लोग यहाँ तक नहीं पहुँचे, इसके लिए इंतज़ाम है। हमें अभी भी याद है कि एक नामचीन गुंडा था, वो भी एक बार वृंदावन आया था, लेकिन जैसे ही उसने 50 डिग्री का अनुभव किया ना गर्मी में, तुरंत कुछ घंटों में भाग गया वो, भगवान की दया से पहुंच तो गया था। तो मुझे गोस्वामी बता रहे थे, अरे वो आया था हमारे पास, फिर भाग गया बेचारा 2 घंटे में। यहाँ पर वही व्यक्ति आ सकता है और टिक सकता है जो ठाकुर जी की सेवा करने के लिए कुछ भी सहने को तैयार है उसी को यहां प्रवेश मिलता है। अभी समझो किसी ने समझा कि भी ठंड शीतलहर आने वाली है और हम अभी कैंसिल करेंगे उसके लिए, तो भी एक फिल्टर है। देखो वो जो दीवार है ना उसके सामने उदासी को आ रहा है, आगे करो और उसको हरे कृष्णा। और समझो वातावरण सम रहा और फिर रूम में गर्म पानी नहीं मिला, समझो ऐसे कुछ भी हो सकता है। या दिन भर लाइट चली गई तो गर्म ही नहीं हुआ, गीजर तो है लाइट भी है लेकिन जब गर्म पानी चाहिए था तभी गर्म नहीं हो पाया वो, या और कोई असुविधा हो सकती है आपको, कई प्रकार की असुविधा यहाँ हो सकती है। वो सब आपके लिए एक टेस्ट है और एक फिल्टर है कि आप कितना उससे प्रभावित होते हो और सेवा में बाधा आ सकती है, या कितना आप नहीं प्रभावित होते हो और सेवा आपकी चलती रहेगी। चाहे आप सेवा करने को आ जाओ या यात्रा करने के लिए, घूमने के लिए, दर्शन करने के लिए चले जाओ, हर समय हमारी यात्रा में और हर समय हमारे कैंप में कुछ ना कुछ ऐसी घटनाएं होती है जो हमारे प्लानिंग में नहीं थी, जिसका प्लानिंग नहीं किया गया था। आपको अभी पता है हमको कि बारिश आती है, सब मालूम है, लेकिन फिर भी जरूर ऐसी अनिश्चित घटना होती है जो इसका योजना नहीं बनाया था हमने पहले कभी। तो इसलिए धाम में आने के पहले बार बार चेतना को तैयार करने की जरूरत क्यों है, इसी के लिए है कि अगर हम धाम में जाकर फिर वहां परेशान हो जाएंगे तो धाम का जो लाभ मिल सकता है वो नहीं मिलेगा आपको, लाभार्थी होने के बदले में आप नुकसान में चले जाएंगे। क्योंकि जैसे ही हमको असुविधा होती है और हम लोग उसके तैयार नहीं उसके लिए, तो क्या होता है, तुरंत हम लोग उस पर टीका करना शुरू कर देते हैं, क्रिटिसाइज करना शुरू कर देते हैं, उसके बारे में बोलना शुरू कर देते हैं, ऐसा क्यों नहीं, वैसा नहीं, ये नहीं, ये नहीं है, वो नहीं है। तो जैसे ही हमारी चेतना इस स्तर पे आ गई ना, कंप्लेनिंग मोड में आ गई, तो तुरंत वो जो कृपा का कनेक्शन है वो टूट जाता है। जिस दिशा से कृपा बह रही है वो दिशा टूट जाती है तुरंत। इसलिए हम सबको ऐसे तैयारी करनी चाहिए कि धाम में कुछ भी हो चलेगा, जो भी होगा वो चलेगा, क्योंकि यहां पर जो भी होता है वो राधा रानी और श्याम सुंदर की इच्छा से होता है, और जो भी होता है वो हमारे अच्छे के लिए होता है। और जितनी असुविधा में, हम ऐसा नहीं सोच कह रहे हैं आपको कि अभी आगे, इसके आगे 20 दिन तक आपके लिए असुविधाओं का योजना बना के रखा है, ऐसा नहीं कह रहा हूं मैं लेकिन जो भी अनिश्चित असुविधाएं आएंगी उसके लिए सब लोग तैयार रहेंगे ना, तो असुविधाओं में जो सेवा करते हैं धन्यवाद देकर, उनको कई गुना क्या कहते हैं, मल्टीपल टाइम्स उन लोगों को लाभ मिलता है, आध्यात्मिक लाभ। जितनी आप सुविधा में, आराम में सेवा करेंगे, कंफर्टेबल सेवा करेंगे, उतना आपको कम आध्यात्मिक लाभ मिलेगा। और जितनी आपको असुविधाएं होगी, शारीरिक होगी, मानसिक होगी, वातावरण की तरफ से होगी या और व्यवस्था की तरफ से होगी और किसी तरफ से होगी, या कोई बीमार पड़ जाएगा जिसको लूज मोशन हो जाएंगे, किसी को बुखार आ जाएगा, उसमें भी जो कृतज्ञ रहेगा तो उसके लिए कृपा जो है ना भंडार खुल जाएगा उसके लिए। यहां की वैसे दिव्य दृष्टि से देखा जाए तो यहां की हर एक व्यवस्था परिपूर्ण है, जो भी व्यवस्था यहां पर है, समझो यहां पर एकदम पूरा कंफर्टेबल सिटी हो जाएगा, तो आप लोगों को वह आनंद नहीं आएगा जो पहले आया था। जैसे हमें अभी भी याद है कि हमने मान मंदिर की सीढ़ियां जो ना, वैसे 3-3 फीट की सीढ़ियां हमने लांग कर मान मंदिर गए हैं। अभी जो आप मान मंदिर या श्री जी के मंदिर में जाते हो ना, एकदम आरामदेह सीढ़ियां हैं, वो कठिन है निश्चित, 350 सीढ़ियां हैं, लेकिन अभी आपके लिए जो बना के रखे ना एकदम सुविधाजनक है। उसके पहले वो पत्थर के अंदर खांचा मार के सीढ़ियां बनाई थी, वो तो चढ़ना आज की तारीख में लगता नहीं मुमकिन है कि नहीं। तो भक्त लोग बड़ी प्रेम से यात्रियों की सुविधा के लिए, आने वाले लोगों की सुविधा के लिए और अच्छा करने का प्रयास करते हैं, फिर भी धाम में अगर असुविधा नहीं होगी तो धाम का महत्व आपको नहीं समझेगा। और अगर कुछ असुविधा हुई और आपने उसमें भी कुछ किया तो आपके लिए वो यादगार बना रहेगा। जैसे मेरे भैया एक बार आए थे और मैं उनको सुदेवी के गांव में लेके गया था, स्वर्णपुर, सुनहरा कहते हैं उसको। उसे अच्छा सफ़ेद कुर्ता और अच्छा सफ़ेद पैजामा पहना था और जा रहे थे हम। अचानक वो एक गटर में फिसल के पूरा गिर गया, कंप्लीट क्या बताऊँ आपको, पूरा सफ़ेद कुर्ता था, पजामा था, पूरा काला हो गया, पूरा बलतफत हो गया वो। तो जाके बस किसी घर में उसको लेके गया, स्नान करवाया और वस्त्र दिलवाए, वस्त्र पहनाए। तो मैंने कहा सुनहरा आपको कभी भूलेगा नहीं, है ना, सुनहरा नहीं भूलेगा। उससे क्या अच्छा है, सुनहरा नहीं भूलेगा तो सुदेवी नहीं भूलेगी, वो घटना याद रहेगी। तो क्या होता है, जब कट गया इधर सेवा करते करते और पट्टी लगा दिया, दर्द भी हो रहा था, तो याद रहेगा ना कि जब मैं ओटी में था तो ये कट गया था, बरसाने में था ना तब मैं ये कट गया था। किसी भी घटना से अगर धाम की और धामेश्वर भगवान की याद बनी रहेगी ना, तो वो हमारे ऊपर कृपा है। वो ये मत समझना कि क्या प्रभु जी बैड लक हो गया मेरा तो कट गया हाथ मेरा। एक तरह से आप देखेंगे तो कष्ट है, एक तरह से देखेंगे तो आपके लिए कृपा है बड़ी भगवान की, क्योंकि उसी के माध्यम से भगवान अपनी और अपने धाम की स्मृति आपको चिरंतन रूप में देना चाहते हैं, जिसे आप भूल नहीं सकते। ऐसी बहुत सारी घटनाएं हमारे कैंप में हुई। ये तो आज जो वर्षा गिरी ना वो कुछ भी नहीं है, जिस तरह से सर्दियों में यहां पर वर्षा होती है, तूफानी कह सकते हो आप उसको, तूफान। और ऐसे तूफान में एक बार यहां पर चाइनीज डिवोटी आए थे, और वो तूफान के पहले एक भी और तूफान आया था कि हमारे कैंप के जनरेटर सेट का कॉइल ही उड़ गया था, मतलब नो इलेक्ट्रिसिटी, नो सर्जरी, सब लोग ऐसे सर्जन बैठे हुए हैं, सब लोग पेशेंट आके बैठे हुए हैं और कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि तूफान आया था बीच में और उसके बाद में ये भी उड़ गया था। रात को 2 बजे तक मीटिंग चली हमारी, प्रभु जी भी थे, बड़े सुंदर प्रभु उस मीटिंग में, और कुछ सुना मैं कुछ किसी को चांदनी चौक भेजा फोन करके, वहाँ से जाओ चांदनी चौक में वो कोयल लेके आओ, बहुत सारा चक्कर चलाया। 2 बजे रात को फिर बोले बिछड़ी का आज के लिए मीटिंग बंद करते हैं, कल सुबह देखते हैं। उतने में मुझे फ़ोन आया इत बीच रात में कि प्रभु जी वो 50 डिवोटी चाइना से आए हैं, उनको इच्छा है कि आप उनको बरसाना घुमाएं। कितनी नेक इच्छा है, लेकिन कितनी कौन सी स्थिति में बताई गई है। मैंने कहा प्रभु जी हमारा जनरेटर बंद पड़ा है, हमारा कैंप बंद पड़ा है, सारे सुविधा सब ठप हो गई है, यहाँ पर हम लोग एक वॉर फुटिंग में उसका कोशिश कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं उसके लिए, नहीं 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 कर सकता मैं, आई थिंक मैं थोड़ा कैंप को सुधारता हूँ, ठीक से चालू हो जाए तो सोचूंगा मैं, वैसे बोल के मैं सो गया। अच्छा ना मैं 4 बजे जाग आई, 4 बजे उठते मेरे मन में ऐसा प्रकाश हुआ कुछ विचारों का, अरे चाइना से डिवोटीज आ रहे हैं, चाइना में कम्युनिज्म का वातावरण है, चाइना में सब लोग अंडरग्राउंड भक्ति करते हैं, चाइना में सब लोग भेष बदल कर सन्यासी लोग वहां जाते हैं और छुप छुप कर बेसमेंट में किधर ऐसे डिस्गाइज रूप में अंडरग्राउंड सत्संग करते हैं। वो लोग कभी तिलक लगा सकते नहीं, धोती पहन नहीं सकते, कुर्ता पहन नहीं सकते, कोई डिवोशनल आभूषण पहन नहीं सकते हैं, कोई गीता को ओपनली रख सकते नहीं है, एक एक गीता को फट्टे फट्टे 1000 लोग पढ़ जाते हैं उसको। इतनी मेहनत से हमारे हिज होलीनेस तमाल कृष्ण को स्वामी महाराज, उसके बाद हिज होलीनेस गिरिधारी स्वामी महाराज, उसके बाद में केशव भारती महाराज, उसके बाद में नरसिम्हा महाराज, इसने महारथियों ने जान की बाजी लगाकर ये प्रचार किया है। और जैसे हमारे मुसलमान बंधु जो होते हैं ना, वो साल भर में अपना जीवन भर में पैसा इकट्ठा करते हैं, एक बार हज की यात्रा करते हैं, होल लाइफ में एक ही बार करते हैं, सारा धन इसके लिए इकट्ठा करते हैं। वैसे चाइनीज लोग जो ना जो भी डिवोटी बने, बहुत गरीब है बेचारे, वो भी जीवन भर में पैसा इकट्ठा करते हैं और एक बार इंडिया में आते हैं, फिर एक बार आते हैं तो फिर जगन्नाथपुरी, नवद्वीप धाम, मायापुर धाम, वृंदावन सब कर जाते हैं, बॉम्बे जो भी प्रभुपाद के मंदिर हैं जितना भी हो सके उतना कर लेते हैं, एक ही बार जिंदगी में धोती कुर्ता पहनते हैं, तिलक धारण करते हैं, जो भी वैष्णव तरीके से रहना है उनको, उनको मंदिर क्या है पता नहीं है, मंदिर है ही नहीं उधर कोई ना, सेंटर भी नहीं है। तो ये सारा चीज़ विचार में आया, और कभी एक ज़माने में इस होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज से दीक्षा लेने की मेरी बहुत इच्छा थी, मैं एक साल तक उन्हीं पर फिक्स था। तो मैंने कहा उन्होंने इतना मेहनत करके इतना डिवोट उसको बनाया, वो बेचारे इंडिया में आए हैं और वो राधा रानी के धाम का दर्शन करना चाहते हैं, और मैं क्यों ना बोल रहा हूं उनको, तो मैंने 4 बजे फोन किया उनको, भेज दो उनको आप। और बहुत कड़ाके की वर्षा हो रही थी, और बहुत ये तो अभी मैंने तो कुछ पहना ही नहीं है, हाँ इतनी ठंड थी उस समय। और जब मैंने हाँ बोला तो भी जब आए वो 7 बजे सुबह, तो बहुत घनघोर वर्षा हो रही थी और सब पानी हो गया था। और आप सोच सकते हैं वो सारे भक्त लोग है ना नंगे पैर यात्रा में आए थे, कहाँ से वृंदावन से निकले वो, सब लोग नंगे पैर आए। मैं देखता रह गया उनको कि इनको मैं ना मना कर रहा था, वातावरण ठीक नहीं इसलिए उन्होंने हमारे पे नाश्ता किया, और फिर भी ऐसे ही नंगे पैर सब लोग निकले। स्वामी जी भी निकले, नरसिंह महाराज वो भी निकले। और क्या कहूँ मैं आपको, इतनी असुविधाजनक वातावरण था, इतना कष्ट था, और किसी को हिंदी इंग्लिश आती नहीं थी। उसमें एक माता जी थी, वो चाइनीज में उसका बहुत सुंदर अनुवाद कर रही थी, तो सुनने के लिए भी अच्छा, घुंघरू की तरह पैरों के ऐसे आवाज आ रही थी, लेकिन बड़े उत्साह से कर रही थी वो। और उसके आगे सुनिए आप, इतनी असुविधा में मुझे ऐसा अनुभव शायद एक ही बार हुआ है लाइफ में, मेरी कथा में, कि मेरी कथा चल रही है और सब श्रोताजन रो रहे हैं। कैन यू बिलीव दिस, हर एक भक्त जो है चाइनीज रो रहा है या रो रही है, क्योंकि कैसा है ना, उनके लिए वो एकमात्र ही कथा है जो सुनने को मिलने वाली है। फिर धाम में कब आएंगे वो, कब धाम में बैठेंगे और कब धाम की कथा वहीं बैठकर सुनेंगे। सबसे अधिक रोए मान मंदिर पे। और फिर लास्ट लेक्चर में मैंने मेरी और तमाल कृष्ण महाराज की जो स्मृतियां थी, जो यादें थी, उसके बारे में मैंने विस्तार में सुनाया, तो फूट फूट कर रो रहे थे सब लोग। तो भैया बताइए किसको ज्यादा लाभ हुआ आध्यात्मिक, जिसका पात्र विस्तृत था ना, एक्सपांडेड, उसी को लाभ हुआ। वो इतने आतुरता लेकर आए थे, उत्सुकता लेकर आए थे, हाँ, कि यही एक ही बार जो सुनना है ना, इसे पूरे कप में भर के पैक करना है उसको। कोई भी सुना हुआ यश जाना नहीं चाहिए, या कोई बाहर नहीं गिरना चाहिए। जो भी सुनने को मिल रहा है, जो भी धाम का वास इंद्रियों के द्वारा, आंखों के द्वारा, नाक के द्वारा, नेत्रों के द्वारा ग्रहण कर रहे हैं धाम को, दृश्य के रूप में, ध्वनि के रूप में, सुगंध के रूप में, या किसी और रूप में, सभी इंद्रियों के द्वारा जो ग्रहण कर रहे हैं, वो एक ही मात्र है उनके लिए, ओनली वंस इन लाइफ टाइम, दोबारा नहीं मिलने वाला है। तो सारी बाह्य असुविधाओं को पार करके वो लोग कृष्ण भक्ति को ग्रहण कर रहे थे। ये नहीं थे कि मेरा प्रवचन बहुत 5 स्टार था, उनकी चेतना 5 स्टार थी, इसलिए आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं खुद दंग रह गया था सब देख के। और मैंने मन में उसी समय प्रण ले लिया कि अभी चाइना और उसी पौर्वात्य देश है ना वो, हांगकांग, चाइना, जापान, वहां से जो भी कभी भी आएगा तो मैं कभी ना नहीं करूंगा उसको, क्योंकि मुझे ज्यादा लाभ है उनसे, उनकी सेवा कर पाऊंगा अगर, तो हिज होलीनेस तमाल कृष्ण महाराज प्रसन्न होंगे मुझ पर, कृपा करेंगे। तो ये सब बता रहा हूं इसलिए कि असुविधाएं हमारे जीवन में भी आती है, नहीं आती क्या? गृहस्थ जीवन में कितनी असुविधाएं आती है, फिर भी हम लोग कितने उत्साह से करते रहते हैं उसको। और भगवान की सेवा में अगर असुविधाएं हैं तो क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि एक उसमें एक रहस्य की बात है। जो असुविधाएं भेजते हैं वही हमको असुविधाओं से बाहर भी निकालते हैं। वन हु टेक्स यू इन टेक्स यू आउट ऑल्सो। और उस रास्ते में, अंदर लाने में और अंदर से बाहर निकालने के रास्ते में, वो अनंत शुद्धिकरण, अनंत कृपा का वर्षाव करते हैं। तो हमको लगा कितना कष्ट हुआ, लेकिन उस कष्ट में अगर आप कृतज्ञ होकर, धन्यवाद की भावना से अगर हमारी सेवाओं को करते रहेंगे, तो एक ही यात्रा में आपको अनंत यात्राओं का लाभ मिलेगा, एक ही कैंप में, अनंत कैंप में सेवा करने का लाभ मिलेगा। इस सारे भक्तिमय जीवन का, प्रगति का जो रहस्य है ना, वो कृतज्ञता में है। सबसे रहस्यमय बात है ये कि किसी भी अवस्था में, किसी भी स्थिति में, किसी भी वातावरण में, किसी भी कठिनाई में, असुविधाओं में, जब भक्त फिर भी ऋणी रहता है, कृतज्ञ रहता है, धन्यवाद के भाव में रहता है और अपना काम जारी रखता है, उस व्यक्ति को भगवान भर भर के कृपा देते हैं। राधा रानी भर भर के कृपा देते हैं, आश्रय देते हैं, अपना बना लेते हैं। और फिर वैसे व्यक्ति का जो कृतज्ञ है उसका वो उपयोग भी कर लेते हैं दूसरों को सिखाने के लिए, आपको एक पात्र बना देते हैं कि ये व्यक्ति सही पात्र है। इससे इसके जीवन में मैं और असुविधा देकर एक लोगों के सामने अच्छा उदाहरण मैं रख सकता हूं, ऐसे भगवान को विश्वास उत्पन्न होता है। और इस तरह से भगवान के पात्र बनने का भाग्य प्राप्त होना यह बहुत बड़ी प्राप्ति है जीवन में। सो लेट अस ऑल बी रेडी टू बिकम ग्रेटफुल। सब लोगों को हमको वो धन्यवाद की भावना में आने के लिए तैयार रहना चाहिए, उस धन्यवाद के भावना में आने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए कि पता नहीं आज पहले दिन में ऐसा हुआ, आगे और भी कुछ हो सकता है, लेकिन भगवान मुझे आप कृतज्ञ बनाए रखिए, मेरी सेवा के भाव को और बढ़ाइए, कम मत होने दीजिए असुविधाओं की वजह से। मैं यहां सेवा करने आया हूं, जो भी हो जैसे भी आप रखें मैं सेवा करना चाहता हूं किसी भी अवस्था में। तो ऐसे व्यक्ति को भगवान पात्र बनाएंगे, और भगवान का पात्र होना यह बहुत, जैसे भगवान ने भीष्मदेव को पात्र बनाया था कुछ दुनिया को सिखाने के लिए, युधिष्ठिर को पात्र बनाया था द्यूतक्रीड़ा में दुनिया को कुछ सिखाने के लिए, ऐसे कई लोगों को भगवान जो अपना समझते हैं उनको भगवान ने पात्र बनाया था। तो हमें भी वो पात्र बनने का मौका है। और धाम तो आपको, आप अगर आते रहेंगे, आते होंगे, आते आए होंगे पहले भी, आपको पता है कि कुछ ना कुछ होता ही रहता है, यहाँ पर अचानक कुछ स्थितियां बदलनी पड़ती है। अभी देखो वहां पर पंडाल लगा था, कथा वहां होनी थी, अभी इधर कथा, कुछ असुविधा तो नहीं है बट एक कश्मकश खड़े होते ना, अभी यहां से वहां स्टेज कहाँ, कैसे लाइट कैसे होगा, क्या होगा, थोड़ा टाइम गया उसके अंदर, लेकिन करना है उसमें, और ये हमारा भाग्य है। अगर हमारे अंदर वो उत्साह है आने वाले हर स्थिति में, हर असुविधा में और हर सुविधा में, ऐसा नहीं कि सुविधा हुई तो हम रिलैक्स हो जाएंगे, असुविधा होंगे तो एक्टिव रहेंगे, ऐसा नहीं। सुविधा हो या असुविधा हो, हमारे सेवा के भावना में और चेतना में कहीं अंतर नहीं आना चाहिए, और वो भी थैंक यू धन्यवाद की भावना में होना चाहिए। इसीलिए भगवान ने ये धाम बनाए हैं हम लोगों को विशेष कृपा देने के लिए। ऐसे हमारे कैंप मुंबई में भी होते हैं, थाने जिला में भी होते हैं, लेकिन वहां पर भी बहुत बढ़िया सेवा होती है, लेकिन यहाँ पर आने के बाद में यहाँ की स्थितियों को, यहाँ की दिव्यताओं को अनुभव करते हुए जो सेवा करेगा ना, उसको लक्ष लक्ष गुना अधिक लाभ होता है वही सेवा करने से, वही एक सर्जरी करने से, जो यहाँ करते हैं और वहाँ करते हैं उसके अंदर जमीन आसमान का अंतर होता है। तो हम लोग यहाँ पर आते हैं कि वहाँ पर जाके सेवा करने के लिए परम शक्ति प्राप्त हो, इसलिए हम यहाँ पर भी आते हैं और सेवा करके फिर वहाँ पर सेवा करने जाते हैं, यहाँ से कृपा बटोर कर वहाँ सेवा करते करना चाहते हैं और वहाँ के लोगों को कृपा बांटना चाहते हैं। ये हमारा भाव है, ये हमारा भाव होना चाहिए कि हम लोग साल भर में एक बार यहाँ पर कृपा बटोरने के लिए आते हैं और साल भर उस सेवा का, वो कृपा का जो है उपयोग करेंगे अपनी सेवा करने के लिए और लोगों पर कृपा करने के लिए, लोगों पर दया करने के लिए। तो इसलिए मैं आपको विनती करना चाहता हूँ, अपने आप को सतर्क रखिए, सुसज्ज रखिए कि कुछ भी होगा तो जितने दिन मैंने यहाँ पर लिखे हैं टिकट में और बुकिंग में, वो तो सारे दिन में सच्ची और अच्छी चेतना में मैं सेवा कर सकूँ। और मनुष्य का स्वभाव है कि जैसे ही असुविधा हुई तो हम लोग कंप्लेन करते हैं, लेकिन हम निश्चय करेंगे कि जितना हो सके हम जो भी है उसको स्वीकार करेंगे, उस पर टीका या टिप्पणी नहीं करेंगे और जैसा भी है वैसे सेवा करेंगे। क्योंकि मैं जानता हूं कि जैसे ही समझ बारिश आती है, पता है सबसे पहले सबसे अधिक टेंशन किसको आता है, सच्ची प्राण प्रभु को, क्योंकि उनको चिंता है कि इन सब लोगों को असुविधा होगी, तुरंत उनका इमरजेंसी प्लानिंग शुरू होता है क्या करना है उसके लिए, और जितना हो सके आपको कंफर्टेबल करने का विचार वो करते रहते हैं और उसको कार्यान्वित भी करते हैं। क्योंकि पहले हमने भी उसको कई साल तक चलाया, तुमको पता है कि जैसे ही कुछ दुर्घटना या कुछ ऐसे चैलेंज आता है ना, चुनौती, तो सबसे पहले नेता को उसका टेंशन होता है कि क्या है, उसको अभी सॉल्व कैसे करना है। तुम जब एक लकड़ी खत्म हो गई और कहीं गैस भी खत्म हो गया और कुछ कोयला भी नहीं मिल रहा है और सब जो मिल रहा है वो बारिश की वजह से गीला हो गया समझो, और आज खाना ही नहीं बना सकते समझो, फॉर एग्जाम्पल, बी रेडी फॉर दैट। उस दिन ये जाएंगे गोवर्धन मार्केट जाएंगे, कोसी मार्केट जाएंगे, सब जगह से फल लेके आएंगे, चूड़ा फरसान जो मिल रहा है वो उठा के लेके आएंगे और आपको खिलाएंगे। मैं एक उदाहरण दे रहा हूं आपको, क्योंकि ऐसे भी पहले हुआ है. एनीवेज, ये सारी इन सारांश में कहा जाए तो ये सब कृपा है भगवान की. क्योंकि एक ऐसी इंग्लिश में बहुत सुंदर वाक्य है कि हम वो हैं, हम वो हैं जो कठिनाइयों में होते हैं. यू आर वॉट यू आर इन डिफिकल्टी. जब आप सुविधा में हो तो आप एक दिखते हो और वो अच्छा भी लगेगा, बहुत वेरी नाइस. सब लोग बोट में जा रहे हैं, सब लोग बोट में पार्टी कर रहे हैं, डांस कर रहे हैं, गा रहे हैं, गले मिल रहे हैं, डांस कर रहे हैं, भोजन कर रहे हैं. अचानक पता चलता है कि अभी बोट सिंक हो रही है, तो क्या होगा? वह हम वो होंगे, हमारा सही अंदर का स्वभाव जो है ना वो होगा. जब वो दुर्घटना का सिग्नल मिलेगा आपको, आराम से बैठे हवाई जहाज में सो रहे हैं, अचानक मालूम पड़ेगा कि हवाई जहाज गिरने वाला है, तो फिर क्या होगा? वो आपकी और हमारी अंदर की चेतना ओरिजिनल जो है ना वो बाहर आएगी उस समय. और दुर्घटना में, असुविधा में, चुनौतियों में जो अपनी चेतना को दिव्यता पर बनाए रखता है, वो मेंटेन्स अवर कॉन्शियसनेस, कृष्णा कॉन्शियसनेस, सर्विस, कंपैशन, काइंडनेस, वो भगवान को बहुत प्रिय होता है. इसलिए हमारी चेतना को थोड़ा थोड़ा टेस्ट करने के लिए भगवान थोड़ा थोड़ा बीच पर भेजते रहते हैं, तैयारी करने के लिए. जैसे पिन लगा तो ओ कृष्णा, प्रैक्टिस के लिए आपको भेजते हैं, ताकि और बागे कभी फ्रैक्चर हो गया तो भी कृष्णा बोल सकते हैं. और धीरे धीरे ऐसे बढ़ती हुई असुविधा में, कष्ट में, द्वेदना में कृष्णा कृष्णा, राधे राधे बोलने का अभ्यास होगा तो हो सकता है मौत के दर्द के समय भी राधे राधे कृष्ण कृष्ण निकलेगा. तो ये प्रैक्टिस है हमारी, और अगर प्रैक्टिस नहीं की हमारी तो हम कैसे पुकारेंगे उनको? वो बिना चुनौती और बिना संकट के कैसे होगा ये? तो इसलिए कहते हैं पेन इज द बेनिडिक्शन ऑफ द लॉर्ड. दर्द जो है वो भगवान की कृपा है हमारे ऊपर, ताकि हम उनकी ओर और बढ़ सके. सुख भगवान की सुविधा कृपा नहीं है, याद रखना उस बात का. क्योंकि सुख से अधिकतर भगवान से लोग अलग हो जाते हैं और दूर चले जाते हैं, क्योंकि सुख आने के बाद में भगवान की याद ही नहीं आती, जरूरत ही नहीं पड़ती. लेकिन दुख आते ही तुरंत उनकी याद आती है. इसलिए दुख जो है उनका वरदान है. समझो आपके हाथ पैर में दर्द नहीं होता, समझो बाद ऐसे आग में पड़ा रहता और मैं कथा कर रहा हूँ, ऐसे हाथ रखा है, पूरा हाथ जल गया, अरे हाथ ही गायब हो गया लेक्चर के बाद. लेकिन अगर दर्द है तो एक कण का भी स्पर्श अग्नि का हुआ तुरंत हाथ यहाँ से इधर आएगा, तो दर्द अच्छा है कि नहीं? जैसे जलने का वेदना हुई तुरंत हाथ बच गया ना मेरा, थोड़ा सा यहाँ पर लाल हो गया लेकिन पूरा हाथ तो बच गया. उस तरह से वेदना हमको बहुत बड़े संकट से बचाती है और भगवान से और नज़दीक लेके जाती है. तो आइए, आप सबका श्री बरसाना धाम में स्वागत है. जय जय श्री राधे श्याम. सारे वृंदावन धाम में सबसे अंदर का हिस्सा है ये. जैसे किसी घर में होता है ना अंतकक्ष, अंतरकक्ष, प्राइवेट चेम्बर्स, वैसे पूरे ब्रज मंडल जो भगवान का ही घर है उसमें ये अंतरकक्ष है, जिसमें जो जिन लोगों को भगवान चाहते हैं, राधा रानी चाहती है, उनको ही प्रवेश मिलता है. सब लोगों को प्रवेश नहीं मिलता है. बहुत सारे करोड़ों लोग वृंदावन में आते हैं, उससे भी ज़्यादा लोग मथुरा में आते हैं, जन्मस्थान देख के चले जाते हैं. उसमें से कुछ लोग वृंदावन आके बांके बिहारी वगैरह वगैरह करके चले जाते हैं. उसमें से भी कुछ फिल्टर होके गोवर्धन पहुँचते हैं, और उससे भी फिल्टर होकर राधा रानी के पास पहुँचते हैं. बहुत दुर्लभ है ये, क्योंकि सब लोगों को यहाँ पर राधा रानी प्रवेश देती नहीं है, उन्हीं की कृपा से प्रवेश मिलता है यहाँ पर. इसलिए कैंप जो हमारा ना, ये बहुत बड़ा सुंदर एक बहाना है राधा रानी की कृपा प्राप्त करने के लिए. परसों भी हम बता रहे थे कि 9 करोड़ लोग यहाँ पर दर्शन करने को आते हैं साल में. उसमें से कुछ, मतलब बाहर के लोगों की बात कर रहा हूँ, यहाँ पे जो रहते हैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ, उसमें से कुछ 1000 लोगों को ही यहाँ पर सेवा का भाग्य प्राप्त होता है. कुछ कुछ सेवा कर रहे हैं यहाँ पर प्रत्यक्ष, और सेवा में बहुत अंतर होते हैं ना. सेवा जैसे फॉर एग्जाम्पल, सब जो स्वामी जी आ गए हमारे गुरुदेव, और हमने कहा महाराज वांट टू सर्व यू, तो अभी महाराज को 50 आइटम खाने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप भी फिर भी आपने एक आइटम वहाँ पर भेज रहे हो कि ये भी महाराज को खिला देना. तो कुछ सेवा ऐसी होती है इसको जरूरत नहीं होती है, बट फिर भी हम करना चाहते हैं, है ना. जैसे आपने हमारा कपड़ा धोना है मुझे, आई वॉन्ट टू वॉश हिज क्लोथ्स, तो आपको बताया जाएगा हमारे पास है लोग, वो ऑलरेडी करते हैं अपने से, लेकिन फिर भी मुझे एक बार कपड़ा भेज देना, मैं धो दूंगा। तो वो सेवा कैसी होगी, उसकी जरूरत नहीं है, बट आप करना चाहते हो तो हो रहा है आपके का। लेकिन कुछ सेवा ऐसी होती है, जैसे कोई सन्यासी महाराज हमारे हॉस्पिटल में आते हैं, बोलते हैं मुझे बहुत दर्द हो रहा है मुझे यहाँ पर, मैं अभी एयरपोर्ट से ऐसे भाग के आ रहा हूँ, मुझे कुछ करो, और आप तुरंत उनको आईसीयू में लेके जाके तुरंत ठीक कर रहे हो, तो वो सेवा कैसी होगी? 10 लोग नहीं है उसमें, आप ही हो, आपके पास भाग के आए हो, प्रभु प्लीज कॉल करेंगे एयरपोर्ट से, मुझे ऐसे हो रहा है। जैसे एक बार मालती माता जी एयरपोर्ट में बेहोश होकर गिर गई थी, कोई नसीब से उनके साथ में कोई था, सीधा उनको बिठा के आईसीयू में लेकर आए भक्ति वेदांत में। तो उस समय क्या बोलेंगे वो, नहीं 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 मेरे पास कपड़े धोने के लोग हैं, मेरे पास जरूरत नहीं, ऐसे बोलेंगे? दे विल टेल यू आई वॉन्ट दिस सर्विस फ्रॉम यू राइट नाउ। तो वो एक प्रकार की सेवा होती है, बरसाना में उस प्रकार की सेवा है, लोगों को अंधे हो गए लोग हो रहे हैं मोतिया के बिंदु की वजह से, और दृष्टि के लिए वो लाइन लगा के खड़े हैं आपके लिए, आपके पास। ऐसा नहीं है कि उनके पास 5 कपड़े धोने वाले हैं, आप बोल रहे आप भी एक बार कपड़ा मुझे भी दे दो धोने के लिए, ऐसा अवस्था नहीं है, वो दे आर डेस्परेट फॉर दैट सर्विस। तो वैसी सेवा राधा रानी हमको दे रही है, जरूरतमंद सेवा दे रही है उनके भक्तों के लिए, उनके अति प्रिय खुद के अपना बोली उनको जिन्होंने अपना बना लिया है, ऐसे भक्तों की सेवा करने का आपको मौका दे रहे हैं। इससे बड़ा परम भाग्य कोई नहीं हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो राधा रानी के पास क्या कमी है जो आपके द्वारा उनकी सेवा करवाने की जरूरत है उनको, वो अपने भक्तों की कैसे भी देखभाल कर सकती है, जो उनके चरणों में पूरी तरह से आश्रय ले चुके हैं, इनका जीवन सर्वस्व राधा रानी और कृष्ण श्याम सुंदर हैं, उनके लिए क्या कमी है एक दूसरे से देखा जाए तो। लेकिन हम लोग थोड़ी बहुत प्रामाणिकता रखते हैं, सिंसियरिटी को रखते हैं, इसलिए वो हमको ये सेवा दे रहे हैं। चलो बंबई के लोग हर साल आते हैं, उनको सेवा दे रहे हैं, उनके प्रिय ब्रजवासियों की भी बहुत जरूरतमंद सेवा, किसी के दांतों की, किसी की आंखों की, ये हमारा परम भाग्य है। हम उनकी सेवा करने के लिए नहीं आए हैं, हम अपनी खुद की सेवा कर रहे हैं, और खुद की सेवा क्या है, आत्मशुद्धि की सेवा कर रहे हैं। बहुत बंबई में प्रयास करते हैं, जब में सो जाते हैं, बहुत सारा कष्ट होता है साधना करने में, तो यहाँ पर आकर वो फास्ट ट्रैक पे साधना और सेवा करने का मौका मिलता है। तो सबसे पहले हम सब लोगों को पता होना चाहिए कि ये मुझे परम भाग्य है, इस बार भी मुझे राधा रानी ने बुला लिया सेवा करने के लिए, अगेन आई एम हियर। एंड तक प्रार्थना करते रहते हैं, हाँ मैं कई सालों से आ रहा हूँ लेकिन पता नहीं इस साल पत्ता कट सकता है, तो इस साल भी प्रार्थना करना है, प्लीज अलाउ मी टू सर्व यू, मुझे आने दीजिए आपके धाम में, आके सेवा करने दीजिए, जो भी मुझसे बने थोड़ी बहुत जो भी है, प्रामाणिकता से, हृदय से, धन्यता धन्यवाद पूर्वक, सहयोग पूर्वक सेवा मिले मुझे, कुछ भी करने को तैयार हूँ लेकिन सेवा दीजिए मुझे, मैं कुछ भी सहयोग करने को तैयार हूँ, इस पार्टी से, उस पार्टी से, एडमिनिस्ट्रेशन से, मेडिकल से, जो भी कुछ हमारी सपोर्ट सर्विस है, मैनेजमेंट है, मेडिकल सर्विस है, प्रसाद सर्विस है, वो सब में मुझे किधर भी सेवा मिले मैं सहयोगपूर्ण भाव से सेवा करने को तैयार हूँ। मैं समझूंगा कि जो नेता है उसके अंदर कितनी चुनौतियाँ हैं, कितनी समस्याएँ हैं, और मैं उनको असिस्ट करना चाहूँगा, उनको सहयोग करना चाहूँगा, उनके योजना में सहभाग करूँगा, लेकिन मुझे सेवा दीजिए प्लीज़, ये भाव हमारा होना चाहिए। उम्र बढ़ती जा रही है, पता नहीं मैं भी कुछ कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, लेकिन फिर भी मुझे बुलाना राधा रानी, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ, जितना हो सके उतना, जितनी शक्ति है यथाशक्ति सेवा करना चाहता हूँ, क्योंकि ये बड़ा अद्भुत धाम है। मैं अभी एक श्लोक पढ़ता हूँ। दधि विक्रयार्थम यान्ति अस्तः कृष्ण कृष्ण इति च आब्रुवन् कृष्णे हि प्रेम संसक्ता भ्रमन्त्यः कुञ्जमण्डले। इस श्लोक का अर्थ यह है कि दही की मटकी सर पे लेकर गोपियां वन में जा रही हैं और दही लो ये पुकारना चाहती है बेचने के लिए, लेकिन उनको पता नहीं है कि वन में क्यों जा रहे दही बेचने के लिए, वन दही में बेचने के लिए, दही लेने के लिए वन में कौन है उधर, बट वो इतने भाव में मग्न है, एक तो वन में जा रही है जहाँ पर कोई ग्राहक नहीं है दही के लिए, और एक तो दही लो के बदले में कृष्ण कृष्ण आब्रुवन, मुख से कृष्ण कृष्ण बोल रहे हैं, मतलब कृष्ण लो ऐसे बोल रहे हैं। इसका उल्लेख कई जगह पर कई कथाओं में आता है। वो दही लेने की बेचने जाती है और बार बार कृष्ण को ही पुकारती है, उनको ही देखना चाहती है, उनको ही देना चाहती है, उनको ही याद करती है और कृष्ण को ही लोगों को देना चाहती है, ये उनका भाव है। तो कृष्ण की स्मृति में पूर्णता संभ्रमित होकर, कंप्लीटली मेस्मराइज्ड एंड बिविल्डर्ड बाय द थॉट्स ऑफ कृष्णा, दे आर वॉन्डरिंग, यहाँ वहाँ भटक रहे हैं, यहाँ की भाषा में बोलते हैं यहाँ वहाँ डोल रहे हैं। हाँ, अरे कहाँ रोल रहे हो यहाँ में, तो चल बतो ना कहाँ जा रहा हूँ। तो कृष्ण की स्मृति में संभ्रमित होकर, आसक्त होकर वो कुंजों में डोल रही है, ना देह का भान है, ना स्थान का भान है, ना और किसी वस्तु का भान है, एक ही भान और चेतना है, वो है कृष्ण। और आखिर में लिखा है कि ऐसे पागलों के द्वारा बना हुआ समुदाय ही ब्रज है। यू नो, ऐसे प्रेम में जो पागल हो गए, भटक रहे हैं, डोल रहे हैं यहां पर वहां पर, इन लोगों का जो समुदाय है, कांग्रेगेशन, इज ब्रज भूमि। तो ये प्रेम की भूमि है, ये प्रेम का धाम है, यहां पर बाकी सारी चीजें फेल हो जाती है, यहां पर साधना भी एक तरह से निष्फल हो जाती है। क्यों? क्योंकि साधना एक स्तर पर है, उसमें हम चाहते हैं आत्मशुद्धि हो, ऐसे हो वैसे हो, प्रगति हो जाए, ज्ञान बढ़े, एडवांसमेंट हो, एक लेवल पे है। फिर कुछ योग करते हैं, वो भी यहाँ फेल हो जाता है, कोई ज्ञान प्राप्त करना चाहते हैं, वो भी यहाँ फेल हो जाता है। कितनी सारी प्रक्रिया है भगवान तक पहुँचने की, वो सारी यहाँ फेल हो जाती है। वो देखो ना, अपना उद्धव जी यहाँ पर आए थे, सोचा था कि गोपियों को योग सिखाऊंगा मैं, बड़ी दुखी है बेचारी, भगवान तो जा चुके हैं, बड़े परेशान हैं, पीड़ित है, विरह में रो रही है, जल रही है, मैं उनको ना स्थिर कर दूंगा भावना से, एकदम ऐसा स्थिर कर दूंगा कि दुख होगा नहीं उनको। हाँ, सुखे दुखे समय, सुख और दुख सेम कर दूंगा उनका मैं। तो आया वो इधर, और बड़े बृहस्पति का द्वारा पढ़ा हुआ शिष्य था वो, बड़ा विद्वान था वो, बहुत विद्वान, पूरे ब्रह्मांड में उसकी कीर्ति थी, द्वारका में तो थी, मथुरा में तो थी। वो आया और देखा जमुना किनारे सब हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो जमुना किनारे बैठे ऐसे ध्यान लगा के सब लोग, ऐसे ये मुद्रा लेकर आंख बंद करके बैठे। उनको लगा अच्छा है, कुछ ट्रेनिंग योगा की है उनको ऑलरेडी, तो मेरा इतना डिफिकल्ट नहीं होगा मुझे बताने के लिए। फिर जाके पूछा गोपियों क्या कर रहे हो, तो कह रहे हैं हम इस योग के द्वारा कृष्ण को बुलाना चाहते हैं। तो उधर ही क्लीन बोल्ड हो गया वो, क्योंकि योग किस लिए होता है, योग का नाम ही युज धातु से बनता है ना, वो मिलाने के लिए योग की प्रक्रिया होती है, जो भूल चुके हैं जिसको, या जिसको खो चुके हैं, जो दूर है उसको मिलाने के लिए योग होता है, योग यानी मिलाना। तो मैं तो मिलाने वाले में PhD हूं, लेकिन ये तो जुदा करने वाले योग की बात कर रहे हैं। बोलते जो हृदय में बस गए हैं ना, पहले हमारा हृदय बहुत सीधा था, लेकिन ये बहुत टेढ़े थे, इनको हृदय में बिसा लिया तो हृदय को भी थोड़ा टेढ़ा करना पड़ा इनको फिट करने के लिए। अभी उनको निकालना चाहते हैं तो ये इतने टेढ़े फंस गए अंदर कि बहुत मुश्किल है निकालना उनको। ये बहुत काव्यात्मक बात है, लेकिन आप समझ सकते हैं मेरी बात को। वेरी डिफिकल्ट टू रिमूव, बिकॉज हमारा माई हार्ट हैज बिकम क्रुकेड बिकॉज ऑफ हिम ही बींग क्रुकेड। तो हम योग करके कोशिश कर रहे हैं कि उसको भूल जाएं। ऐसे व्यक्ति पर प्रेम नहीं करना चाहिए जो छोड़ के बेईमानी से निकल जाता है। तो तुम दंग रह गए, वो ज्ञानी पुरुष उद्धव जी पूरे दंग रह गए, ये कैसा सिद्धांत है, ये समझ में नहीं आया मुझे कुछ। इसका मतलब क्या हुआ, उसका ज्ञान का भ्रम और योग का भ्रम तो वही फूट गया, पूरा खत्म हो गया पूरा। जो बड़ी योजना बनाकर ज्ञान के आधार पर आया था, पूरा संसम्भ्रमित हो गया वो। जैसे कि आप अभी बहुत अच्छा एग्जाम के लिए सारे किताबें क्वेश्चन सब प्रिपेयर करके गए हैं, और आपको पता चलता है कि आज मैथ्स का पेपर ही नहीं, आज साइंस का पेपर है। ऐसे होता है कई बार, अभी मुझे सपना आते हैं कभी कभी। जब जगता हूँ तो बड़ा सुकून का अनुभव करता हूँ, कभी मैं विद्यार्थी नहीं रहा, लेकिन ऐसा सपना पड़ता है कि मैं बायोलॉजी पूरा पलट के गया हूँ और आज मैथ्स का पेपर है। तो क्या अवस्था होगी अपनी, ऐसी उद्धव की अवस्था हो गई। उसको कुछ एग्जाम पेपर दिए गए थे, कुछ सिचुएशन दिए गए थे, कुछ करिकुलम दिया गया था, पूरा पढ़ के तैयारी करके गया था बेचारा वो, लेकिन आके देखा तो कुछ अलग ही सब्जेक्ट है आपका आज। इस तरह से उद्धव जी को पहली बार ब्रज का अनुभव हुआ, उस प्रकार से फर्स्ट टाइम एनकाउंटर। क्या चीज, क्या है ये, कौन है ये लोग जो कृष्ण को भूलना चाहते हैं, जहां जहां जाता हूं वहां सब लोग कृष्ण को मिलना चाहते हैं, और ये कौन स्त्रियां हैं जो उनको भूलना चाहते हैं, हृदय से निकालकर बाहर फेंकना चाहते हैं, याद भी नहीं करना चाहते। और फिर बाद में क्या हुआ, ये जो बताया ना यहां पर भ्रमंत्यः कुंज मंडले, अभी उसकी जितनी भी तैयारी थी वो सारी तैयारी उधर ही फेल हो गई। जो जो आयुध लेके आए थे ना शस्त्र, वो सारे फेल हो गए। अभी करूं क्या मैं, आगे का काम कैसे करूं। और जहां जहां गया, अभी पहले गोपियों की मुलाकात हुई ऐसे, फिर देखा गायों को देखा, वो भी चित्रपट की तरह खड़ी है, ना आंख भी मीचा नहीं रही है, ऐसे चित्रपट की तरह। बछड़े भी ऐसे खड़े, दोस्त भी खड़े ऐसे ही है। यशोदा मैया और नंद महाराज के पास गए तो वहां पर नदियां अश्रु की बह रही है, वो समझ में नहीं आ रहा उसको कि इनका घर कहाँ है। तो किसी ने कहा ये दो नदियों के किनारे पकड़ के चले जाना पहाड़ पे, उनको मिलोगे आप। तो वो किनारे किनारे चला गया तो नंद भवन तक गया, और नंद भवन से वो दो नदियां बह रही थी। नंद भवन के अंदर गया, देखा तो दो नदियों का उगम इन दोनों की दो दो आंखें हैं, नंद महाराज यशोदा रो रहे हैं। तो आपने पास बहुत डॉक्टर बैठे यहाँ पर है ना, ऑप्थल्मोलॉजिस्ट भी बैठे हुए हैं, तो बोलते हैं कि वो लैक्रिमल सैक होता है उसका कैपेसिटी कितना होता है उसका भी वर्णन आया इसके अंदर। अश्रु ग्रंथि में कितने अश्रु रह सकते हैं, निर्माण कितने हो सकते हैं, 10 ml 20 ml कितना होता है बताइए, लैक्रिमल सैक का कैपेसिटी कितना होता है, 20 ml, एक साथ उतना ही अश्रु बनकर बाहर निकल सकते हैं और बन सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तो ऐसे नदियां बह रही है, वो कैसे हो सकता है। बोले दिव्य स्तर पर कुछ भी हो सकता है, दिव्य स्तर पर सारे आपके फिजियोलॉजिकल नियम सब फिनिश हो जाते हैं, लॉजिकल नहीं रहते वो सब। हमारा तर्क जो है ना, वो हमारा ज्ञान का तर्क जो है उसके परे दिव्यता होती है। द डिविनिटी इज बियॉन्ड योर लॉजिकल अंडरस्टैंडिंग। इसलिए भगवान तर्क में नहीं है, भगवान तर्क के परे हैं। तो यही दिव्यता का परिचय हुआ। तो देखकर दंग रहेगा, अभी मैं इनको क्या मैसेज दूं, फिर भी दिया मैसेज। और जिस तरह से उन्होंने जवाब दिया वहां पर और भ्रमित हो गया वो। फिर गोपियों को मिला, गोपियों ने कहा कि हम आपको यहां नहीं मिलेंगे, आपको जंगल में लेके जाएंगे। तो जंगल में लेके गए, और वहां पर एक गोपी रो रही है, एक हंस रही है, एक ताने दे रही है, एक गाली दे रही है, एक तारीफ कर रही है, ऐसा माहौल देखा उन्होंने। क्या एक्चुअल तुम्हारा भाव क्या है बताओ जरा, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। कोई कंप्लेन कर रहा है, कोई हंस रहा है, कोई पागलों की तरह डांस कर रहा है, कोई असंबद्ध बातें कर रहा है, तो और हैरान हो गया वो। लेकिन एक बात उसके समझ में आ रही थी धीरे 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 सारे संभ्रम के अंदर, कि इनके अंदर सभी लोगों के अंदर ग्वाल बाल गाय बछड़े सखा सखियां माता पिता गोपियां, इनके अंदर वो प्रेम है जो मैं नहीं जानता, जिसके विषय में मुझे ABCD भी परिचय नहीं है। ये उसको अनुभूति जरूर हुई अंदर से। फिर वो सोचता रहा अभी मैं क्या करूं, भगवान ने सांत्वना करने के लिए भेजा था मुझे, क्या करूं मैं, क्या करूं क्या करूं। तो अचानक उनको देखा कि गोपियों ने ना भगवान की यादें बताना शुरू किया, उनके बारे में भावना करते वक्त करते करते भगवान की यादें बताना शुरू किया उन्होंने। और जब वो यादें बता रही थी तो बड़े आनंद में थी वो, बड़े दुख से विरहित, दुख से अलग होकर आनंद का अनुभव कर रही थी। तो उनको लगा हाँ ये अच्छा तरीका है, इनको बोलना चाहिए, मैं ऐसे करूँगा कि उनको बोलते रखूँगा, सबको बोलते रखूँगा, तो ये अपने आप सांत्वना प्राप्त करेंगे। फिर वो एक अद्भुत दिव्य यात्रा ब्रज की हुई जो 6 महीने तक चली। 6 महीने तक वो दिव्य यात्रा चली ब्रज की, जिसमें हमेशा यात्रा में कैसे होता है, एक धाम दर्शक होता है, और हमारी यात्रा में कम से कम एक ग्रुप में 800-900 डिवोटी होते हैं, है ना। और शाम को फिर एक वक्ता होता है और 6000 भक्त ऐसे बैठे रहते हैं और कथा सुनते रहते हैं। कैसे, आपने सुना ऐसे कभी कि हजारों वक्ता हैं और एक श्रोता है, हजारों वक्ता वो एक श्रोता को प्रवचन दे रहे हैं। आप सोच के देखिए जरा कि आप सब लोग कथा कर रहे हैं और मैं अकेला सुन रहा हूं, सोच सकते हैं आप, विचार कर सकते हैं। यही हुआ, अगले 6 महीने में गोपियों ने जा जाकर उद्धव जी को वो स्थान दिखाए जहां जहां उन्होंने भगवान से लीला किया था। इस जगह पर ये हुआ, उस जगह पर वो हुआ, ऐसे यहाँ पर जल में ऐसा हुआ, उधर पहाड़ पर ये हुआ, उधर ऐसे हुआ। और कैसे है ना, मराठी में शब्द है अहम अहमिका, मतलब मैं बोलूँ कि आप बोल रहे, मुझे पहले बोलना, ऐसे एक कंपटीशन वहां पर है। सब लोगों को अपने दिल की बात बतानी है कि उसी घटना में मुझे क्या लगा, उसी घटना में तुम्हें क्या लगा, उसी घटना में मुझे क्या लगा। एक ही घटनाओं को सभी लोग अपने अपने दृष्टि से वर्णन कर रहे हैं। 6 महीने तक पूरा ब्रज का चप्पा चप्पा छान मारा उन्होंने, और उनको केवल उत्साह देते रहे वो कि बोलते रहो आप, बोलते रहो, क्योंकि उसी में उनको दुख से क्या विरक्ति उनकी हो रही थी, दुख से उनकी मुक्ति हो रही थी, आनंद का अनुभव हो रहा था, और वापस कृष्ण के याद का जो दिव्य आनंद था उसमें वो डूबते हुए नजर आ रही थी। तो ढूंढ लिया तरीका उसने अपना, लेकिन वो तरीका मुंह बंद करके करने वाला तरीका था। पहले वाला तरीका मुंह खोल के बार बार बोल बोल के काउंसलिंग कर करके करने का तरीका था। उसको उन्होंने बड़ी ही क्या कहते हैं उसको प्रामाणिकता से त्याग दिया। कैसे ना, हम डॉक्टर समझो है और आपके पास कुछ एक्सपर्टीज है, हाँ, और आपको बड़ा विश्वास है कि मेरे पास जो स्किल है ना, ये जो कुशलता है, इससे मैं जरूर मरीज को अच्छा कर सकता हूँ। लेकिन कभी कभी आपको पता चलता है अंदर से कि ये मेरा तरीका जितना भी है, इस मरीज को उससे लाभ नहीं मिलने वाला है। कोई एक सिंपल तरीका है जो मेरे ईगो के पूरा खिलाफ है, लेकिन वो उसको मदद कर सकता है। तो प्रामाणिक डॉक्टर क्या करेगा, मुझे मेरी कुशलता का अमल करने को मिलेगा या नहीं मिलेगा कोई बात नहीं, मरीज को सुकून मिलना चाहिए, जाओ उस झोपड़ी में जाओ, वो जो कह रहा है वो करो, और अच्छा लगेगा तो मैं बहुत धन्यवाद, खुश हो जाऊंगा मैं। इसके लिए भी एक नम्रता की आवश्यकता होती है, टू गिव अप योर पेशेंट एंड लेट हिम गो टू वन सो कॉल्ड क्वैक्स हैंड्स, तथा कथित जो डॉक्टर नहीं है उसके हाथ भेजना उसको ठीक करने के लिए। मैं एक आपको एक ऐसा एक उदाहरण दे रहा हूँ, आप समझिए। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि उद्धव जी बड़े ज्ञानी थे, बड़ा ऊंचा पद था उनका, बड़े मशहूर थे, प्रसिद्ध थे, वो किसी बहुत वस्तु में प्रसिद्ध थे, अपना एक तरीका सोचकर आए थे, लेकिन उन्होंने बड़ी नम्रता से गोपियों की प्रेम की स्थितियों को देखते हुए अपनी सारी योजनाओं को बाजू में रखा और एक कोई अलग ही तरीका अपनाया। जो खुद का इलाज खुद ही कर रही हैं, उनको खाली अपना खुद का इलाज करने के लिए आप प्रोत्साहन दे रहे, बस वही किया उन्होंने। कितनी बड़ी बात है ईगो के लिए। उनको कृष्ण को रिपोर्ट देने का मौका था कि मैं गया ब्रज में और मैं आपकी सारी गोपियों को शांत करके आया, देखो आपने रिपोर्ट दिया, आप फोन करके पूछो वो सब शांत मिलेंगे आपको, ऐसा उनको एक मौका था, वो मौका ही चला गया। और गोपियों ने ही खुद को ही भगवान की याद की स्मृतियों की कथाएं बताकर सांत्वना दिया, और उन्हें चुपचाप रहकर नम्र रूप से 6 महीने तक केवल सुनते रहे। लाइक इंग्लिश में कहते हैं ना, ही वॉज ओनली सोकिंग एंड सोकिंग एंड सोकिंग, वो प्रेम के धारा में अपने आप को भिगा रहे थे, बिल्कुल बस तृप्त कर रहे थे, संपृक्त कर रहे थे, सैचुरेटेड ऐसे कर रहे थे अपने आप। तो ये भूमि में ना ज्ञान पलता है, ना साधना पलती है, ना योग पलता है, ना और कुछ पलता है, यहाँ पर केवल प्रेम पलता है। और वो प्रेम के लिए साधना करना आवश्यक है, ऐसा नहीं कि साधना, लेकिन साधना यहाँ प्रेम की है। आपको लगता होगा यहाँ के लोग इतने दिखने में कुरूप हैं, एकदम गरीब हैं, और क्या पढ़े लिखे तो है ही नहीं, गंवार है एकदम, रहते भी कैसे हैं, कोई तौर तरीके नहीं, उनको एटिकेट्स पता नहीं है, लेकिन ये बाहरी दृष्टि है, एक बाहर का एक क्या कहते हैं उसको इल्यूजन है, भ्रम है बाहर का, आपको बहकाने के लिए, ताकि आपको उन पर क्रोध आए, आप उनको डांटे, बोले इधर बैठो, ऐसे कुछ बोले आप उनको कि मैं कितना सुसंस्कृत हूँ, कितना पढ़ा लिखा हूँ, कितना मुझे तो शिष्टाचार पता है, मैं सब कुछ जानता हूँ, मैं बहुत अच्छी तरह ट्रेंड होके आया हूँ, ये जो हमारा स्थिति है ना मन का, उसके सामने वो लगता है ये कुछ भी नहीं है लोग, लेकिन उनके हृदय के अंदर के गाभा में जो प्रेम छुपा हुआ है ना, वो बहुत अलौकिक है और बहुत दिव्य है। कितना भी लोग गुंडागर्दी करते होंगे, कितना भी कुछ भी करते होंगे, लेकिन यहाँ पर जो जन्म ले चुके हैं वो श्री जी और कृष्ण भगवान के श्याम सुंदर जी के बड़े ही अनंत कृपा प्राप्त हैं, क्योंकि उसके बिना यहाँ जन्म ही नहीं मिलेगा उनको। हो सकता है जन्म लेने के बाद में वो कुछ करते रहेंगे, वो उनके और भगवान के बीच में है, हमारा उसमें कुछ दखल देने का काम नहीं है, हम लोग उसमें जजमेंट करने के लिए यहाँ पर नहीं आए हैं, वो उनके और उनके बीच का हिसाब किताब है, वो क्या करना चाहते हैं उसके लिए लेट देम सी देमसेल्व्स, हमें उनको उस तरह से देखना नहीं चाहिए, हमारे शहरी दृष्टि से जैसा हमको लगता है वैसे, हमें उनको केवल वंदनीय और पूजनीय रूप में ही देखना चाहिए अगर हमको अपना भला करना है तो, और अपना नुकसान करना है तो जजमेंट करते बैठो उनके आप, फिर जिसके लिए आए थे वो लाभ तो होगा नहीं और जो था हमारे पास वो नुकसान करके आप चले जाओगे। इसलिए हमारा जो बाहर के लोग आए, हम लोग बाहर से आए हुए हैं, हमारा भाव ये होना चाहिए कि ये जो कुछ यहाँ पर हो रहा है इनके चेतना के स्तर पर वो हमारे लिए बहुत दिव्य है, ना समझ के स्थिति में है। हमारा काम एक ही है, इनकी सेवा करना और इनको प्रसन्न करना, कैसे भी करके इनको खुश करना और इनसे आशीर्वाद मिलना, मतलब मिलने की व्यवस्था करना। ऐसा कार्य करें जिससे वो संतुष्ट हो जाएं और वो आशीर्वाद देने के लिए प्रवृत्त हो जाएं और आशीर्वाद दें हमें, वो यहाँ की सबसे बड़ी हमारी प्रवृत्ति होनी चाहिए कि आई एम हियर टू प्लीज देम एंड टू इन्वोक ब्लेसिंग्स फ्रॉम देम नेचुरली, ताकि मैं मेरे भक्ति के जीवन में प्रगति कर सकूं। कुछ गिने चुने दिनों का यहां पर निवास है हमारा, कोशिश करके इस भावना को आप बटा रही, ताकि यहां पर जो भी क्षण, जो भी घंटे, जो भी दिन हमको मिल रहे हैं वो सारे आपके अनंत जीवन के आध्यात्मिक पूंजी को मिलाने में समर्थ हो, और समर्थ है वो, और हम उसको ग्रहण करने में समर्थ हो जाएं, सक्षम हो जाएं, ये हमारी चेतना होनी चाहिए। हमको अपने आप को अनंत भाग्यशाली मानना चाहिए कि जहां पर एक मिनट के लिए भी प्रवेश देवताओं को प्राप्त नहीं है, तुरंत भगाया जाता है उनको, देवताओं को प्रवेश नहीं है यहां पर, देवता लोग आकाश में मंडराते रहते हैं, उनको यहां पर प्रवेश नहीं है, वहीं पर म्यूजिक बजाते हैं, वहीं से फूल वर्षा करते हैं, लेकिन अंदर आने का प्रवेश नहीं उनको। ऐसे जगह पर आप लोगों को, हम लोगों को अंदर प्रवेश मिला है, ना केवल प्रवेश और दर्शन मिला है, सेवा भी प्राप्त है। सेवा भगवान उस व्यक्ति को देते हैं जिस पर भगवान को विश्वास होता है। अभी आप अपने बच्चे को जब डॉक्टर की जरूरत होती है तो कोई भी किसी के पास लेके जाते हो क्या? आप कोई डॉक्टर नाम का व्यक्ति ऐसा ही बैठा हुआ है, हाँ इसके पास लेके जाओ, ऐसा नहीं। आप 10 बार तय करोगे कौन डॉक्टर अच्छा है, कितना दूर है, कितना पास है, फीस भी बाद में देखोगे, लेकिन अच्छा है कि नहीं, बच्चे ठीक होते ना यहाँ पर, यहाँ पर कितनी आप तहकीकात करते हो। जब आपको श्रद्धा उत्पन्न होती है कि ये डॉक्टर सही है मेरे बच्चे के शरीर को ठीक करने के लिए, मेरे बच्चे का शरीर सुपुर्द करने के लिए उसके हाथ में, वो पूरी तहकीकात करते हैं, पूरा स्टडी करते हैं, फिर आपको अपने बालक को लेके जाते हैं वहाँ पर और अपने बालक के शरीर की सेवा उसको दे देते हैं आप विश्वास के साथ। वैसे ही भगवान को अगर किसी भी अपने प्रिय भक्तों की सेवा करवानी है तो उनको भी श्रद्धा होनी चाहिए ना आपके ऊपर कि आप कर पाओगे और आप करोगे, तो आपको मौका देते हैं वो। तो हमको मौका मिल रहा है, ये हमारे पर कृपा है, तो मौके का कैसा पूरा उपयोग करना चाहिए ये हमारा कुशलता है, ये हमारी कुशलता होनी चाहिए कि वी शुड मेक द बेस्ट यूज ऑफ द अपॉर्चुनिटी दैट वी हैव रिसीव्ड। ये धाम ऐसा है कि यहां पर कुछ कुछ चीजें ऐसी हैं जो गौलोक वृंदावन में भी नहीं है। तो गौलोक वृंदावन जो है चिरंतन धाम है भगवान का, सब लोग हम लोग वहां जाना चाहते हैं, लेकिन वहां पर भी भगवान के बाल स्वरूप का दर्शन नहीं है जो यहां पर है। ऐसी बहुत सारी अद्भुत बातें हैं जो यहां पर उपलब्ध हैं। यहां की भूमि जो है ना वो इतनी पवित्र है, जब भगवान का जन्म हुआ था ना तब पृथ्वी बड़ी प्रफुल्लित हो गई थी, रात के समय कमल खिले थे, रात के समय पंछी गुंजरव कर रहे थे, मोर तोता कोयल, रात के समय कोई पक्षी सोते हैं रात को, रात के समय पर कमल खिले, सभी प्रकार के फूल फूल खिले हुए हैं, पेड़ और बेलियां फूलों और फलों से लद गई थी, सब जगह सुगंध हो गया था, तो पृथ्वी बड़ी विशेष खुश थी क्योंकि उनको पता था कि मैं ही गाय बनकर ब्रह्मा जी के पास गई थी और मुझे ही लेकर गए थे वो विष्णु के पास में, और वहां पर हरि का दर्शन हुआ था और हरि ने वादा किया था कि मैं आऊंगा, अभी वो आएंगे तो मुझे ये बात भी पता है कि वो जूता नहीं पहनेंगे। आपको पता है वैकुंठ की भूमि को भी वो भाग्य नहीं है भगवान के चरण स्पर्श का, क्योंकि तो वैकुंठ में इतना ऐश्वर्य है कि सब जगह मखमल और रत्नों से भरा कवरिंग किया है जमीन के ऊपर, जैसे हमने अभी यहां पर गद्दा बिछाया ना, ऐसे मखमल और रत्न से भरे हुए मुलायम, ऐसे चुभने वाले रत्न नहीं, रत्न जड़ित है लेकिन मुलायम और कंफर्टेबल ऐसे भूमि को बना के रखा है। ऊपर से वहां वैकुंठ में भगवान बोलेंगे ना मुझे अभी यहां से वहां जाना है, तुरंत ऐसे रत्नों से बने हुए चप्पल आएंगे उनके पहनाने के लिए, वो धारण करके जाना पड़ता है, और थोड़ा दूर जाना होगा रथ आके खड़ा रहता है, और वो जमीन पर जो आवरण है उसके ऊपर चप्पल पहनकर उस पर रथ पर चढ़ते हैं और रथ से जाते हैं, वहां पर भी उसी आवरण के जमीन पर उतरते हैं, वो चप्पल धारण करके वो अंदर चढ़ते हैं। कहीं भी भगवान के नग्न चरण कमलों का भूमि को स्पर्श का भाग्य नहीं है, और वो भाग्य यहां पर प्राप्त होने वाला है ये पृथ्वी को पता था, इसलिए पृथ्वी बड़ी प्रफुल्लित हो गई थी कि मेरे भूमि पर ब्रज भूमि पर ये नग्न चरणों से चलेंगे और उनके चरण चिन्ह बनते रहेंगे और वही मेरा अलंकार होगा, मेरे शीश के ऊपर भगवान के चरणों का अलंकार अनंत मात्रा में प्राप्त होगा, इसी भाव से पृथ्वी प्रफुल्लित हो गई थी। और भगवान के चरण कमल कैसे होते हैं उनका कितने शास्त्रों में कई प्रकार से वर्णन किया गया है, उनके चरणों में अनेक दिव्य चिन्ह होते हैं, उनके चरणों के बॉर्डर पे सुनहरा प्रकाश होता है। अब मैं आपको एक छोटी सी कहानी बताता हूं कि भगवान के चरणों के बारे में क्या चर्चा हो रही है ब्रज में, कैसा भाग्य है ब्रज भूमि का, है तो गोलोक का हिस्सा लेकिन आकर बसा है पृथ्वी पर ना अल्टीमेटली, तो पृथ्वी अपने भाग्य को समझ रही है। तो ऐसे ही भगवान गाय चराते हैं, गाय चराना भगवान का यहां पर प्रमुख एक्टिविटी है, गाय भगवान के जीवन में सर्वोत्तम सर्व केंद्रित वस्तु है, गाय के लिए भगवान जीते हैं, गाय के लिए ऊपर अपना नाम रखते हैं, गोपाल गौलोक सब गौ के ऊपर निर्भर है, उनका अस्तित्व ही गौ से है। तो वो सोचते हैं, बताते हैं अपने सखियों को सखाओं को, आप ना जरा हल्दी और चंदन का एक लेप बनाना मुलायम, और गायों के खुरों को साफ करके उसको लगा देना, क्योंकि ये गायें जो है ना गाय बैल वो बहुत कंकड़ कांटे पत्थर में चलते रहते हैं, उनको तो तकलीफ भी होती है जख्म भी हो जाता है, तो आप उसको रात को हम लोग लौट के आते हैं उसके बाद में उनके खुर सब साफ कर देना और हल्दी का लेप कर देना उसके ऊपर। ऐसे कृष्ण की इच्छा थी तो सभी लोगों ने पूर्ण की उसको। तो ये सब चल रहा था, तो यशोदा माई को पता है ना कि गाय कहाँ कहाँ चलती है, पत्थर में कांटे में कंकड़ में, उनको ये भी पता है कि हमारे कृष्ण बलराम वो भी चलते हैं, तो उनके मन में चिंता उत्पन्न होने लगी कि गाय के तो वैसे भी बहुत कड़क कड़क पैर होते हैं, इनके तो चरण कमल ऐसे होते हैं, क्या बताएं उनके बारे में, कि मक्खन भी उससे सख्त होता है, मक्खन आपने देखा है ना जब निकालते हैं ना उसको इतना मुलायम होता है, ऐसे करेंगे तो दोनों उंगलियां मिल जाएंगी आपकी, इतना मुलायम होता है, कहते हैं उनके चरण कमल मक्खन से भी मुलायम थे। यशोदा माई सच्ची माता कौसल्या देवी इनको राम गौरांगा कृष्ण के बालकपन के शरीर को उठाने में बड़ा चिंता होती रहती थी कि मेरे उंगलियां कितनी सख्त हैं, इनका शरीर कितना कोमल है, वैसे चरण कमल थे। और गोपियां रोती थी हमेशा, अरे अभी बाहर निकल रहा है ये, अभी ये गौचरण करने जाएगा, पता नहीं कौन सा कंकड़ कौन सा कांटा लगेगा कौन सा को सख्त पदार्थ का स्पर्श होगा, हाँ चुभने की जरूरत नहीं है, जब हम उंगलियां दबाते हैं उसके ऊपर उनके तलवे पर तो वो लाल हो जाते हैं, हमारी उंगलियां लगने से लाल हो जाते हैं, और वो सख्त पत्थर का स्पर्श होगा तो पता नहीं क्या अवस्था होगी, ये सोच सोच कर ही रोते थे घर में बैठ के, इतने चरण कमल मुलायम थे। तो यशोदा मैया ने तय कर लिया कि अभी मैं इनके लिए जूता बनाऊंगी और जूता पहनने के लिए बताऊंगी और ये मेरा निश्चय है। तो आइए कृष्ण के पास, पूरा वर्णन किया जंगल का, इधर उधर का, कांटों का कंकड़ का और पत्थर का, सख्त वस्तुओं का, इधर का उधर का, ओके आपको भी जूता स्वीकार करना है, नहीं मैं बिल्कुल नहीं जूता पहनूंगा, क्यों, तो पहले सब गऊ के लिए जूता बनाऊं, उनके पैर तो बहुत सख्त है उनको जरूरत नहीं है, तो फिर मेरे पैरों को सख्त बनाओ उनके जैसे, लेकिन मैं जूता नहीं पहनूंगा, तो बोले क्यों नहीं पहनेंगे? नहीं, मैं उनके जैसे पैरों को सख्त आपके पैरों को नहीं बना सकती, लेकिन आपको जूता पहनना है, मेरी आज्ञा आपको। कहते मैं कभी भी जूता नहीं पहनूंगा। तो उनका आवेश देखकर यशोदा मैया बड़ी क्या कहते हैं उसको, भ्रमित हो गई, आश्चर्य हो गया उनका, ऐसे क्यों बोल रहे हो, क्या कारण है उसका, ऐसे बोल रहे हो कि मैं कभी भी नहीं पहनूंगा। का कारण यह है कि मुझे पूर्णमासी भगवती पूर्णमासी देवी ने कहा है कि वृंदावन ब्रजभूमि जो है वो वृंदा देवी का हृदय है, मैं भला वृंदा देवी के हृदय पर कैसे चल सकता हूं। आप जानते हैं ना वृंदा देवी कौन है? वृंदा देवी भगवान की बड़ी 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 प्रिय गोपी है, जो गोलोक धाम की है, वृंदा गोपी, बड़ी विशिष्ट विशिष्ट गोपी है वो। अष्ट सखियों में उसका स्थान नहीं, फिर भी वो अष्ट सखियां उनको वंदन करती हैं, ऐसी विशेष गोपी है वो। कितने अद्भुत प्रकार से भगवान की सेवा करते, कभी आपको अलग बताएंगे उसका। तो ये वृंदा देवी को, इतनी राधा रानी को स्वयं प्रिय है वो, कि राधा रानी ने वृंदा देवी का अपने हाथ से श्री कृष्ण भगवान से विवाह किया था, और विवाह में भेंट के रूप में ये जो भूमि है वृंदावन, ये वृंदा देवी को दान में दी थी, भेंट में दी थी, इसलिए वो वृंदावन नाम पड़ा उसका। और भी कई कारण है उसके, लेकिन एक कारण है उसका, वो वृंदा देवी का हृदय है ये ब्रजभूमि, ऐसे मुझे भगवती पूर्णमासी देवी ने कहा था। और ये भगवती पूर्णमासी देवी कौन है? ये पार्वती का अवतार है, ये कृष्ण लीला में पूर्णमासी बनकर गोपियों के गुरु बनकर आती है। अगर मुझे पूर्णमासी देवी बताती है कि पहनो जूता, तो मैं पहन लूंगा। तो तुरंत यशोदा माई पूर्णमासी के पास गई और पूछा, आपने ऐसे कहा था क्या उसको? हाँ, मैंने कहा जरूर था, लेकिन वास्तविक कारण मैंने जूता न पहनने के लिए कहा था वो ये नहीं था, मैं बालक को समझाने के लिए मैंने वो कारण बताया था, लेकिन वास्तविक कारण ये है यशोदा कि जब कृष्ण भगवान, मतलब हमारे कन्हैया, जब एक एक कदम चलते हैं ब्रज भूमि पर, तो जहाँ जहाँ उनके चरण कमल गिर रहे हैं, पड़ रहे हैं, वो चल रहे हैं, वो हर एक कदम के साथ में भूमि को चैतन्य प्राप्त होता है, भूमि को पोषण प्राप्त होता है, भूमि अमृत को ग्रहण करती है, फिर वही भूमि उस अमृत को इनके चरणों का ग्रहण करने के बाद में फल फूल धान्य जो सौंदर्य है, जितनी पुष्टि है, वो हमको देती है। पृथ्वी इनके चरणों का अमृत को पान करती है, फिर समृद्धि हमको रिटर्न में देती है। अगर कृष्ण भगवान के चरण ब्रजभूमि को नहीं लगे, तो ब्रजभूमि एक रेगिस्तान बन जाएगा। तो पूर्णमासी कहते हैं, आप खुद देख सकते हो जाके। तो अगले दिन यशोदा माई कृष्ण को उन्होंने विदा किया गोचारण के लिए, और उनके पीछे पीछे गई दूर से, उनको पता नहीं क्या आ रही है, लेकिन बहुत दूर जाने के बाद पीछे पीछे से आ रही है, और उन्होंने हर चरण चिन्ह को देखा। उसमें क्या था, जहां चरण चिन्ह था वो भूमि लाल हो गई थी। तो यशोदा माई बहुत आश्चर्यचकित हो गई, ये तो लगता है कुमकुम है, ऐसे रक्त जैसे वर्ण हो गया उसका, लेकिन बाद में पास में जाके देखा तो लगा कि कुमकुम है। तो मैंने कहा, मैंने इनके पैरों में कुमकुम तो लगाया नहीं। तो पता चला कि रात को सखियां और मंजरियां आके उनके पैरों को कुमकुम लगाकर मालिश करती हैं गुप्त रूप में, इनको पता नहीं है। तो उनके मन में प्रश्न आया कि हाँ, ये तो पता चला कि इन्होंने लगाया, कि मैंने तो स्नान कराया उस सुबह, ये धुला कैसे नहीं? कॉमन क्वेश्चन ना, एकदम सिंपल क्वेश्चन। तो उसका उत्तर यह है कि जो माधुरी रस से प्रेम से लगाया गया है, वो वात्सल्य रस के व्यक्ति से धुला नहीं जाता है, वो परमानेंट भाव का कुमकुम है वो। तो वो कुमकुम जो है वो भूमि को वो दे रहे हैं, एक एक चरण कदम रखते रखते। तो और पास में गई वो, और वो लाल चिन्हों को देखते चली गई। हाँ, मुझे अभी अनुभव हो रहा है कि इसके चरणों से अमृत बह रहा है। और पास में गई, उन्होंने वो चरण चिन्हों को स्पर्श किया, और स्पर्श करके वो कुमकुम लगा, उसका स्मेल लिया उन्होंने, गंध लिया, तो बड़ा आनंद का प्राप्ति किया उन्होंने। शी वॉज इन ब्लिस, कंप्लीट शांति और दिव्य आनंद का अनुभव किया उसने। तब उन्होंने यह अनुभूति की कि हर एक कदम के साथ में भूमि ठंडक और अमृत को पान करने का अनुभव कर रही है, ये निश्चित देखा उसने। तो उन्होंने कहा कि अभी इसके बाद में मैं कभी भी कृष्ण भगवान को जूता पहनने के लिए आज्ञा नहीं दूंगी या मजबूर नहीं करूंगी। तो एक प्रश्न का उत्तर मिल गया कि हाँ, इनके चरणों से पृथ्वी को, ब्रजभूमि को, क्या कहते हैं इसको, पुष्टि प्राप्त होती है, सौंदर्य प्राप्त होता है, जीवन प्राप्त होता है, हमें हमारा पोषण उस पृथ्वी से प्राप्त होता है जो इनके चरणों के द्वारा अमृत ग्रहण करती है। लेकिन एक और प्रश्न बचा है, फिर पत्थर का क्या, जब पहाड़ पे चलता है तो पैर को कितना कष्ट होगा। तो जाके वापस पूर्णमासी को पूछती है, व्हाट अबाउट द रॉक्स, कठिन पर्वत का क्या। तो पूर्णमासी कहती है, इसकी जो बांसुरी है ना, उसकी ध्वनि बजते ही वो सारे पत्थर पिघलने लगते हैं। तो उसको ना पहली बात पर इतना अविश्वास नहीं था, लेकिन ये बात पर जरूर ज्यादा अविश्वास हुआ कि हाउ इज दिस पॉसिबल। तो फिर वो, उन्होंने कहा पूर्णमासी को, चलो मेरे साथ, हम भोजन थाली, चरण पहाड़ी, काम्य वन में जाएंगे, वहां पर तो पहाड़ियां ही पहाड़ियां हैं, वहां पर आपको मेरे वचन का प्रमाण मिलेगा। तो फिर उन्होंने कृष्ण के मुंडन करने का निश्चय किया, होता ना मुंडन। तो मुंडन करने का स्थान उन्होंने चुना केदारनाथ, यहां पर भी केदारनाथ है, बाय द वे यहां पर भी बद्रीनाथ है। उसकी छोटी सी कहानी ऐसी है कि जब कृष्ण भगवान नहीं हुए थे तो यशोदानंद बाबा ने ऐसा मन्नत मांगी थी कि जब कृष्ण बालक संतान होंगे तो हम एक दिन चार धाम की यात्रा करेंगे। तो एक दिन निकले वो, तो कृष्ण भगवान ने बोला, कहाँ जा रहे हो आप? हम चार धाम की यात्रा करने जा रहे हैं। क्यों जा रहे हैं ब्रज छोड़कर? नहीं, जैसे ही आपका जन्म हुआ तो हमने वादा किया था ना, हम कभी, आप तो बड़े भी होने लगे, तो उसके पहले हमारी मन्नत हमको पूरी करनी चाहिए, हमारा जो प्रण था, वचन था, तो हम जा रहे हैं। बोले, कोई जरूरत नहीं बाहर जाने की, मैं केदारनाथ बद्रीनाथ को यहीं बुला लेता हूँ। तो बड़े हंस पड़े हो जोर से, ऐसा भी कोई स्थान आता है कि यहाँ पर हमको जाना पड़ता है? स्थान को थोड़ी उठा के, जैसे कि कपड़े में, बैग में कपड़े लेकर यहाँ पर आ गए, मुंबई के कपड़े लेकर, लेकिन थोड़ी घर लेके आए आप अपना, हाँ अविराही लेके आएगा इधर, आप कोई शांतिनगर लेके आए इधर, कोई सृष्टि यहाँ पर लेके आए क्या? नहीं, वो तो घर वही है, बैग में से कपड़ा लेकर आए, वो भी ढूंढ रहे हैं कौन सा कपड़ा कौन से बैग में रखा है। तो ऐसे कैसे हो सकता है? तो उन्होंने कहा, आँख बंद कर लो। तो सभी लोगों ने, ब्रजवासियों ने आँख बंद कर ली। अभी बोले, आँख खोलो। तो जब आँख खोले तो सब लोगों ने अपने आप को हिमालय के बीच में पाया, एक तरफ बद्रीनाथ, एक तरफ केदारनाथ, एक तरफ यमुनोत्री, गंगोत्री, हर की पैड़ी, हरिद्वार, गंगा, यमुना, सरस्वती, सब नदियों का दर्शन एक साथ में हुआ। फटाफट सब लोगों ने कपड़े उतार कर स्नान कर लिया, अपना प्रण जो वचन था वो पूरा कर लिया। उस तरह से केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री सब प्रकट हो गए, सब काम्य वन में विराजमान है। और लाभ क्या है उसका, कि वहां पर तो 16 घंटे चढ़ना पड़ता है, कभी घोड़ी पर या कभी खुद चलते हुए जाना पड़ता है, 16 घंटे उतरना पड़ता है बर्फीली वातावरण में, प्राणवायु बहुत कम है, ऐसे बहुत सारे कष्ट है, तपस्या है। यहाँ पर तो क्या, 10 मिनट में आप चढ़ सकते हो, वातावरण भी अच्छा है, कोई सर्दी वर्दी बर्फ होकर गिरता नहीं है। तो वो केदारनाथ का जो प्राकट्य था वो इस लीला के पहले ही हो चुका था। तो उन्होंने केदारनाथ को उनके मुंडन का विधि करने के लिए तय किया। तो जैसे ही केदारनाथ पहुंचे, कृष्ण बलराम दोनों ऐसे भाग के पहाड़ पे चले गए, एकदम भाग के। तो जैसे ही भाग के चले गए, कृष्ण के हर एक चरण के स्पर्श से केदारनाथ का पहाड़ जो है ना, वो ऐसे कंपन प्राप्त कर रहा था, कंप हो रहा था उसका, डर के मारे नहीं, प्रेम से कंप का अनुभव हो रहा था उस पहाड़ को। और जैसे भागे वो, कैसे वो इतने सख्त पत्थर में चरण चिन्ह बनाते बनाते गए वो, तो शोधा तो आश्चर्य हुआ कि लाइन लगी है चरण कमलों की। तो फिर वो जाके वो चरण कमलों को छुआ, तो उसमें तो पूरा चरण चिन्ह बना हुआ है, लेकिन चरण चिन्ह बनने के बाद वो बस सख्त है वैसे ही वैसे जैसे पहले था बिना चरण चिन्ह के। मतलब क्या समझ में आया उसको, कि ये चरण रखते ही पहाड़ जो है ना, वो अपने आप मोम जैसा बन जाता है, मक्खन जैसा बन जाता है। चरण जहां पड़ेंगे वहां मक्खन जैसा, चरण छूट गया वापस सख्त, लेकिन चरण चिन्ह बनाने के बाद वो अपने आप को सख्त कर देता है। तो केदारनाथ जी कौन है? स्वयं शिव जी है। नंदीश्वर नंदगांव में कौन है? स्वयं शिव जी है। ब्रह्मगिरी यहाँ पर जो ब्रह्माचल, जहाँ पर शिव जी का मंदिर है, वो ब्रह्मा जी स्वयं है। ये सबका यही वर्णन है। गोवर्धन विष्णु जी है, उनका भी यही वर्णन है। क्या वर्णन है? कि जैसे ही कृष्ण और बलराम दोनों अपना चरण रखते थे उस जगह पर, उस समय पर वो मुलायम मक्खन की तरह बनते थे, उनके चरणों में, चरणों को सुख देने का प्रयास करते थे, और उन चरणों के माध्यम से अमृत का अनुभव करते थे, प्रेम के अमृत का। तो इस तरह से यशोदा माई ने अपने आंखों से देखा कि इनके चरण चिन्ह जो है, यही ब्रज की शोभा है। इन्हीं चरण चिन्हों को देखकर अक्रूर जी जैसे वृंदावन में प्रवेश करने का समय आया तो रथ से उतरकर लोटपोट हो गए। वो एक ऑफिशियल वस्त्र पहनकर, जूता पहनकर, रथ में धारण करते हुए वस्त्र पहन के, मुकुट पहन के वो निकले थे मथुरा से। मथुरा के बड़े अधिकारी थे ना वो, अपने एक स्टेटस में निकले थे वो। लेकिन जैसे ही ब्रज में प्रवेश किया ना उन्होंने, जमुना पार करके, तुरंत जूते उतार दिए, मुकुट उतार दिया और तुरंत लोटपोट हो गए। वो क्या देख के लोटपोट हो गए? भगवान कृष्ण बलराम के दोनों चरण चिन्हों को दर्शन करके भाव विभोर हो गए। वो उनमें उनसे इतना प्रकाश आ रहा था उन चरण चिन्हों को, वो उसको मिस नहीं कर पाए जैसे उन्होंने प्रवेश किया। रथ से उतरकर लोटपोट होते गए वो। प्रभुपाद जी भी लिखते हैं कि ब्रज में प्रवेश कैसे करना चाहिए, ऐसे ही ब्रज के भूमि पर, ब्रज में लोटपोट होकर प्रवेश करना चाहिए, जैसे अक्रूर जी ने एक आदर्श रखा हुआ है। ऐसे ही चरण चिन्हों की ऐसी कई कहानियां हैं। जैसे एक जगह पर गोवर्धन में, नंदगांव में, गोवर्धन में, वृंदावन में, हर जगह पर ऐसे ऐसे पेड़ थे उस समय कि नंदगांव के पेड़ की शाखा मथुरा तक पहुंचती थी, गोवर्धन की पेड़ की शाखा नंदगांव और मथुरा तक पहुंचती थी, जमुना पार पहुंचती थी। ऐसे ऐसे जाल था आकाश में पेड़ों की शाखाओं का, इतने ऐसे विशाल वृक्ष वहां पर हुआ करते थे। तो ऐसे एक गोवर्धन के पर्वत के पास में एक लंबी शाखा के किनारे पे एक तोता और मैना बैठे हुए हैं, और तोता कृष्ण का गौरव कर रहा है और मैना जो है वो राधा रानी का गौरव कर रही है। एक ये बात बोलती है तो उसको काटने के लिए ये दूसरी बात बोलता है कृष्ण भगवान के गौरव में, फिर कृष्ण भगवान के गौरव से राधा रानी का गौरव कैसे और बड़ा है वो बताने के लिए वो मैना और कुछ बात बताती है। ऐसे करते करते उनकी बात कैसे होती है, वो नीचे देखते हैं जमीन पे, तो कृष्ण भगवान के और राधा रानी के कुछ चरणों के चिन्ह हैं वहां पर पूरे पूरे, और आगे जाकर आधे आधे एक ही जोड़ी है चरणों की, समझ आया? पहले दो दो चरणों की जोड़ी, दो जोड़ी हैं आगे आगे आ रही है। उसके आगे देखते हैं कि आगे एक ही जोड़ी है चरणों की, चिन्ह की, लेकिन आधी चरणों की चिन्ह है और गहरी भी है जमीन में। आप विचार कर सकते हैं, दो जोड़ी पूरे पूरे चरण चिन्ह ऐसे आगे आगे आ रहे हैं। उसके आगे देखेंगे तो एक ही जोड़ी है, लेकिन वो जोड़ी भी कैसी है, आधे चरण चिन्ह की है और पहले वाले चरणों की चिन्ह से बहुत गहरी है। तो तोता मैना क्या बोल रहे हैं, हाँ राधा कृष्ण अभी यहां से गुजरे हैं, फिर शायद राधा रानी थक गई होंगी इसलिए कृष्ण को राधा रानी को कृष्ण ने अपने कंधे पर उठा लिया होगा, तो उनके चरण चिन्ह गहरे गहरे और राधा रानी के चरण चिन्ह है ही नहीं, ऐसे वो बोल रहे हैं। तो उसमें क्या हुआ, फिर ये कुछ बोला, फिर ये कुछ बोली, फिर तोता ने कुछ बोला, फिर मैना ने कुछ बोला, ऐसे करते करते उनका ना आंखों से अश्रु बहने लगे, और वो अश्रु बहकर जो गिरे ना वो उस गड्ढे में गिरने लगे, जो आधे चरण चिन्ह गहरे बने हुए थे वो भरने लगा धीरे धीरे दोनों के चरण प्रेम भरी बातों से और प्रेम भरे अश्रुओं से। और जब इनका संवाद समाप्त होने को आया तो समझो ये शाखा है पेड़ की, वो लोग ऐसे बैठे हैं, दोनों ऐसे बैठे हैं, दो अपने पैर रखकर, समझ सकते हैं ना आप, वैसे बैठते हैं। जैसे इनका संवाद समाप्त हो गया ना दोनों भाव विभोर होकर बेहोश हो गए और ऐसे हो गए, अभी पैरों से शाखा पकड़ी हुई है, सारा शरीर जो है लटक रहा है और आंखों से टप 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 अश्रु बह रहे हैं, और वो गड्ढे में जाकर गड्ढे को भर दिया। उतने में एक कीटक वहां से उड़ते उड़ते आया और वो गड्ढे में गिरा और गिरते ही चतुर्भुज वैकुंठ धारण करके वैकुंठ में चला गया। छोटी सी कहानी है लेकिन आप समझ सकते हैं कि ब्रज में भगवान के चरण चिन्ह कितना बड़ा अलंकार है ब्रज का। और ये सारे चरण चिन्हों के पीछे कुछ कुछ भगवान की लीलाएं छुपी हुई है, प्रेम की लीलाएं छुपी हुई है, प्रेम का भाव छुपा हुआ है, और यहाँ के जितने भी निवासी है वो इस सब प्रेम का ही आस्वादन करते रहते हैं। जिस प्रकार से आस्वादन करते हैं ना आप देख के हैरान हो जाएंगे। अब राधाष्टमी पे आएंगे, होली पे आएंगे, जैसे गंवार दिखने वाले लोग ऐसे गीत गाते हैं ना यहाँ पर बैठकर, तभी आपको लगेगा कि यही रहस्य है कि भारत में इतने आक्रमण हुए, हजार साल के, 800 साल के, 200 साल के परदेशियों के आक्रमण हुए, राज्य हुआ, लेकिन फिर भी ये संस्कृति नष्ट नहीं हुई, और भारत उस धर्म का नहीं बिना जिस धर्म का लोगों का आक्रमण हुआ। तब मुझे एहसास हुआ कि इतनी गहराई में ये प्रेम का भाव छुपा हुआ है इन ब्रजवासियों के अंदर, कोई भी परकीय आक्रमण उसको नष्ट नहीं कर सकता है, इतना गहराई में छुपा हुआ है। और भी एक वर्णन आता है कि ये जो ग्वाल बाल थे वो हर एक व्यक्ति संगीतज्ञ था। गंधर्वों के गुरु कौन थे? तुम्बरू। गायन एकदम श्रेष्ठ, सब गंधर्वों को सिखाते हैं। गंधर्व तो जन्म से ही गायक होते हैं, लेकिन उनको भी एक गुरु होते हैं तुम्बरू। और वो तुम्बरू के गुरु कौन है? शिवजी, प्रलयंकारी शिवजी, वो तुम्बरू के गुरु जी हैं गायन वादन में। वो कहते हैं ये भी आते हैं, जब भी कभी कभी आते हैं तो ग्वाल बालों के गायन के सामने स्तब्ध होकर फेल हो जाते हैं। शंकर भगवान भी उनके सामने अपना गायन वादन का कला दिखा नहीं सकते हैं। वो कहते हैं कि जैसे ही ग्वाल बाल गाने लगते ना, तो कहते हैं वो सबसे सर्वश्रेष्ठ दिव्य संगीत की महफिल है वो। उसमें जब ये आते हैं और सुनने लगते हैं तो स्तब्ध हो जाते हैं, निशब्द हो जाते हैं। ऐसे ही गंवार दिखने वाले ग्वाल बाल है, उनको देखकर ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्या भाग्य है उनका। अहो भाग्यम, अहो भाग्यम, हाँ व्रजो कसाम कुछ बोलते हैं। कैसा भाग्य है इनका, पता नहीं क्या भाग्य लेकर आए हैं। कृष्ण का बोलते परमात्मा जो है इनका सखा है, कैसे भाग्य इनका, क्या किया इन्होंने अपने पूर्व जन्मों में। ऋषि मुनि पूछते हैं, सुखदेव जी को परीक्षित महाराज पूछते हैं, सभी जितने संवाद भागवत में हैं सभी लोग पूछते हैं कि ये कैसे हो सकता है, इतना निकट का सानिध्य, हमें दूर से भी दर्शन नहीं हो रहा है। ये सारे ग्वाल बाल सखियां गाय बचरे उनको इतना आलिंगन देते हैं, चूमते हैं। कहते हैं वो मुरली बजा दे तो निर्जीव लकड़ी भी होती है ना बांस की, उसके अंदर भी अमृत प्रवेश करता है, भगवान का अधरा अमृत प्रवेश करता है। और कृष्ण भगवान मुरली बजाते हैं तो अमृत जो है अधरा अमृत वो मुरली पी लेती है। और जो भी फिर वो आवाज़ सुनते हैं तो पंछी जैसे सुनते हैं, समझो फॉर एग्जांपल, वो फिर अपने कानों से इस भाव को ग्रहण करते हैं मुरली की ध्वनि को, और फिर उस मुरली के ध्वनि से जो अमृत मुरली ने पिया है वो कानों के माध्यम से ग्रहण करते हैं उसको, और फिर उनके आंखों से प्रेम के अश्रु बहने लगते हैं। वही अमृत जो कानों के माध्यम से प्रवेश कर रहा है वो आंखों के माध्यम से बाहर निकल रहा है, और वो बाहर निकलता है और पृथ्वी पर गिरता है और पृथ्वी उस अमृत को ग्रहण करती है, प्रेम के अमृत को, और अपने आप को धन्य मानती है। कैसी चीज है यहाँ पर आप सोच सकते हैं। तो यहां पर ऐसा वर्णन आता है कि अगर अश्रु ग्रंथियां छोटी भी होंगी तो उस अमृत में इतनी शक्ति है कि उस छोटी सी अश्रु ग्रंथि से अनंत नदियां बहा सके। वो अमृत की शक्ति है जो भगवान के अंदर छुपी हुई है, प्रेम का अमृत। तो ये सब जब देखा गोपियों ने कि इतना अमृत भगवान दे रहे हैं, तो उन्होंने भगवान को भेंट देना चाहा। तो वो बांस के जंगल में गई, तोड़ तोड़ के बांस को तोड़ा, उसकी मुरलियां बनाई और भगवान को भेंट दी कि ये जो अमृत बहाने का सिलसिला है ये चलते रहने दीजिए, और ये भगवान के जो मुरली की ध्वनि है वो पूरे ब्रह्मांड के सारे आवरणों को पार करते हुए, विरजा नदी को पार करते हुए, ब्रह्मांड को पार करते हुए, विरजा को पार करते हुए, ब्रह्म ज्योति को पार करते हुए, पहले महाविष्णु मिलते हैं उसके बाद विरजा, उसके बाद में वैकुंठों को पार करते हुए गोलोक धाम तक पहुंच जाती है। आपको लगा कि बहुत बड़ा वॉल्यूम होता है क्या उसका? नहीं, ये सब सूक्ष्म चीज़ें हैं, सब भाव की बातें हैं, अलग स्तर पर ये काम चलता है। ये ध्वनि भाव के रूप में सब तक, सब लोगों तक पहुंचती है। ब्रह्मा भी झूलने लगते हैं महानिद्रा में, जो महाविष्णु है योग निद्रा में वो भी ऐसे डोलने लगते हैं, अनंत शेष डोलने लगते हैं इनके मुरली का आवाज सुन के। और ये सारा ब्रजभूमि का स्थाई भाव है। दिस इज द बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ ब्रजभूमि कि बंसी प्रिय सखी, भगवान की चिरंतन बंसी यहाँ पर प्रिय सखी बनकर रहती है। उनके संग से सारे व्यक्ति पुनीत हो जाते हैं, सारे व्यक्ति यहां के पवित्र हो जाते हैं, और वो लोग हैं ये ब्रिजवासी जो आपके पास सेवा लेने आ रहे हैं। यहां पर कथा को विश्राम दें, थोड़ी देर से कथा शुरू की थी तो इसलिए ब्रिजवासियों को आप सामान्य मत समझना, जो आपके पास सेवा लेने आ रहे हैं और जिनको देने का भाग्य आपको प्राप्त हो रहा है, ये भगवान के परम सखाएं और परम सखियां हैं। इनका ये आखिरी जीवन है, वो कितने भी कैसे भी आपको दिखेंगे, आपके तरफ से गुनहगार भी रूप देख सकते हैं आपको, वो चीटिंग कर रहे हैं, किसी को क्या कर रहे हैं, आपको लगता होगा। तो जैसे भी है, वो जो भी है, ये इनका आखिरी जन्म है और श्री कृष्ण और राधा रानी उनको अपने गोद में लेंगे इस जन्म के बाद में। और ऐसे व्यक्तियों से मिलने का, उनकी सेवा करने का, उनको प्रसन्न करने का और उनसे आशीर्वाद ग्रहण करने का ये सुनहरा अवसर हम सबको प्राप्त हो रहा है। जय जय श्री राधे श्याम।